اور ہمارے اسٹوڈیو میں گرما گرم خبریں پک دیا خبریں لے کر شازیہ ملک صاحبہ آ گئی ہیں. پروگرام ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شازیہ کیسی ہیں؟
وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. ہمیں تم کیسے ہو؟
الحمدللہ
ٹھیک ہو. خیریت سے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟
بس کچھ نہیں. آپ کی اور
مکھیاں مار رہے ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں بڑی دیر سے مکھیاں مار رہے ہو. بیٹھے ہوئے
بیٹھ کے مکھیاں ہی مار رہا
ہوں. مطلب ہے کبھی عارفہ جی کا انٹرویو, کبھی میرا انٹرویو, بیچ میں ایڈ, بیچ میں کلام. تو مطلب ہے تم جو ہے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہو بدھی دکھانے کے لیے. چکر کیا ہے آج؟ آج زیادہ ہی فراغت ہے کچھ تمہارے پاس.
مکھیاں مار رہا ہوں.
اچھا اچھا ٹھیک ہے.
مارنے آپ بھی آ گئی؟
نہیں نہیں, تم کہہ رہے تھے نا مائی باڈی نیڈز ریسٹ, تو اب اور کتنا ریسٹ چاہیے تم کو؟
مسئلہ ہے کہ وہ جو میں سو رہا تھا نا, اس سیٹ پہ آپ آ کے پانچ منٹ بیٹھ کے سو کے دکھائیں.
اچھا,
پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ میں کتنا سو رہا تھا.
کیوں, اس کے نیچے سوئیاں لگائی ہیں تم نے؟
بات ہے نا کہ گرین, کیا کہتے ہیں, گراس جو ہے وہ آلویز گرین
آن دا ادر سائڈ.
ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دور سے دیکھا تو وہ چل رہے, قریب جا کے دیکھا تو انڈے ابل رہے ہیں.
یا یا قریب سے جا کے دیکھا گنجے اچھل رہے.
یہ ریسزم ہوتا ہے پتا ہے, یہ بھی ریسزم.
اچھا ریسزم میں آتا ہے. تم کہتے ہو جی آپ جو ہیں فور فیٹ ہیل کے ساتھ تھری انچز. اچھا یہ ریسزم نہیں ہے.
نہیں بات سنیں, میں نے آپ کو ناٹا کا کیا بولتے ہیں, ناٹی جاٹی کہا؟ نہیں
نہیں.
کبھی میں نے آپ کو موٹا کہا؟
ہاں نہیں. لیکن تم نے کہا آپ اگر گر گئی تو آپ کو اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا.
لیکن میں نے آپ کو کبھی یہ کہا
مطلب
آپ موٹی ہیں؟
ہاں نہیں. تو یہ جو تم یہ جو بٹوین دا لائنز تمہارے یہ جو اشارے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے پھر؟
یہ تو لائنز آپ نے خود ہی بھر لیا نا پہلے. یہ میں نے نہیں کہا.
نہیں نہیں, یہ تو تم نے کہا.
آپ نے مجھے ڈائریکٹ جو ہے وہ اٹیک کیا. اچھل رہے تھے قریب. قریب آئی کیوں, دور سے دیکھو.
ایگزیکٹلی, غلطی ہے.
غلطی آپ کی ہے.
ہاں میری غلطی ہے.
آپ قریب آ کے دیکھ رہی ہیں.
ہاں دور سے دیکھو.
دور سے دور سے
وہ آنے ہی نظر آئیں گے. اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے. مائی بیڈ, سوری سر.
نیکسٹ ٹائم اس کا خیال رکھیں.
ٹھیک ہے,
پھر آپ کو پتا ہے. پھر یہ
ڈالا ڈالا
ڈالا. ہاں ویسے اب آپ نے جو جس طریقے سے انٹرویو بھی کیا ہے, آپ احمد کا جو ہے وہ ڈالا آ جائے گا.
آ جائے گا. میرا اور سلمان دونوں کا ہے. ایک کو ادھر سے اٹھائیں گے.
میں بالکل ڈسکلیمر چلا دوں, مینجمنٹ کا اور میرا, یہ اڑ جاتی ہے وہی اٹھا لے. اب ڈالا اٹھائے یا اللہ
اللہ افسوس کی بات ہے. یہ تمہاری نیک خواہشات ہیں میرے لیے.
آئی آلویز ریسپیکٹ یو نا, آئی آلویز.
ہاں آپ زندہ رہی
اور آپ خرم رہے, صحت مند رہے, اپنے خرچے پہ ہمارا کیا جاتا ہے. ہم نے کوئی ہمارا کوئی لینا دینا.
اچھا ابھی جو یہ تم نے مجھے صحت مند کہہ دیا, یہ ریسزم نہیں ہے؟
دیکھو یار, مطلب ایک آدمی تعریف
کرے, اپنی طرف سے مجھے موٹا کہنے کی کوشش کی ہے, یہ صحت مند کیا ہوتا ہے؟
یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ٹی وی پہ چل رہا تھا نا, اس پہ لکھا ہوا تھا ایسوسیٹ ایڈیٹر. تو آپ چاہتی ہیں اس کے آگے لکھ دوں جونیئر ایسوسیٹ ایڈیٹر؟ یہ آپ خود ہی لائن بنا لیتی ہیں. میں نے نہ موٹا بولا, نہ پتلا بولا, نہ چھوٹا بولا, نہ لمبا بولا. صحت مند کا مطلب ہوتا ہے کہ یو آر بلیسڈ, یو آر ہیلدی.
اچھا یہ چکر ہے, یہ مطلب ہے.
پتا نہیں کون سے انگلش
ایکسپلین کیا کرو نا. ہم تو جس کو صحت مند کہتے ہیں کہ او ہو آج کل تو تم بڑی صحت بنائی ہے, اس کا مطلب ہے وہ موٹا ہے وہ بندہ.
کہاں سے ہو گیا موٹا؟ صحت کا مطلب موٹا.
ہاں وہ موٹا ہے بہت. یعنی کہ
پھر آپ ایسا کریں ایڈمیشن لیں جہاں سے ہم پڑھ کر آئیں.
اچھا ٹھیک ہے,
دہلی گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول.
ٹھیک ہے,
اینڈ دہلی گورنمنٹ کالج کریم آباد کراچی.
ٹھیک ہے بالکل.
پہلے اسکول میں لیجیے گا.
نہیں پہلے تو پھر جو ہے وہ لڑکے کا بھیس ڈالنا پڑے گا نا, لڑکے کا بھیس ڈال کے.
وہ آپ ایسا کریں, دہلی گرلز کالج نہیں تھا ہمارا تو نہیں تھا, لیکن اسکول تھا. آپ دوبارہ اسکول سے پڑھیں.
اب ٹھیک ہے صحیح ہے.
لڑکیوں کا الگ سیشن تھا, لڑکوں کا الگ. تو آپ ایسا کریں پرائمری یا سیکنڈری اسکول میں لڑکیوں کے اس میں ایڈمیشن لیں.
ٹھیک ہے,
تب آپ کو پتا چلے گا صحت مند کس کو کہتے ہیں, موٹے کو نہیں کہتے.
اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے.
بلا وجہ لاکھوں ڈالر انگریزی اسکول میں انگریزی بیٹ پہ ضائع کیا اور اس کے بعد
چوانی کا پتہ نہیں ہے.
چوانی کا پتہ نہیں.
بڑے افسوس دکھا. چلو باس کوئی بات نہیں ہے, مائنڈ نہ کرو, ذرا کم کر لیجیے تھوڑا جہاں فٹافٹ. آج بہت ساری خبریں ہیں,
زیادہ خبریں ہیں,
زیادہ خبریں ہیں. آج
خبریں
فٹافٹ سناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آج جو ہیں بڑی ہی خطرے میں ناک کچھ خبریں ہیں. تو آپ نے بہت ہی जो है वो दिल लगा के सुनना है, ठीक है, आपने दिल छोड़ना नहीं है. ओके जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ओपन माइक कैफे. और ये जो है कहते हैं कि बहुत है दिल के लिए, आपके दिल के क्लोज है ये. अच्छा ठीक है, और इसमें वो कहते हैं हमारे बड़े स्पेशल ऑफर्स हैं, और अगर आप स्पेशल ऑफर्स और इनका देसी लिशियस कुजीन का मजा लेना चाहते हैं तो आप इनके जो है वो रेस्टोरेंट में विजिट भी कर सकते हैं. इसका इनका ये दे आर लोकेटेड एट 1310 डंडास स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 3 मिसिसैगा में. और अगर आपको कॉल करके पता करना है कि भाई क्या क्या चीजें हैं तो आप कॉल कर लें एट 416-526-6800. और जनाब डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसैगा यहां पे होती हैं डॉक्टर नाजिया रहमान. डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जाएं, वो भी आपके दंत बिल्कुल चमका देंगी अगर पीले हैं या कुछ कीड़े लगे हुए या कोई भी चक्कर हो रहा है, ठीक है जी. तो डॉक्टर नाजिया रहमान के पास आप जाएं. और ये जो है शी इज लोकेटेड एट 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट E103 ब्रैम्पटन में. और इनका नंबर है 9058721100. एंड जनाब पायल ज्वेलर्स, इनके पास बहुत ही जबरदस्त किस्म के डिजाइन हैं, और दुबई सिंगापुर इंडिया और जो है पाकिस्तान से जो है वो बहुत अच्छी इन्होंने 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी मंगवाई है. एंड दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन. इनका नंबर है 9057907879. असलम भाई यहां पे होते हैं तो आप इनको कॉल कर लें और इनसे डिटेलें आप थोड़ा सा पूछ लें, ठीक है जी. ओके अच्छा जनाब, हम आपको सुनाते हैं जो खबरें हैं जो कि आज जरा थोड़ी इम्पॉर्टेंट है और ज्यादा भी हैं. कनाडा जो है वो प्लान बताएगा, जैसे कि अभी आमिर ने भी खैर जिक्र किया था कि वो अपना 2% ऑफ जो है जीडीपी डिफेंस पे खर्च करेगा कि नहीं, या अगर करेगा तो कब तक करेगा. इसकी डिटेल्स अभी तक भी नहीं आई हैं, लेकिन जाहिर है कि हमने आपको कल भी बताया था कि एलाइज जो है उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, यूएस ने इसके ऊपर बहुत सारी बात की थी. तो ट्रूडो साहब जो है वो अब जब अपने एलाइज के साथ मिले थे, आज बाइडन साहब जो और जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं और जेंस स्टॉल्टनबर्ग जो के जो है नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उन्होंने कहा था कि नाम ना लेते हुए ट्रूडो साहब का स्टॉल्टनबर्ग साहब ने कि भाई जो एलाइज हैं उनको 2% करना ही पड़ेगा, विच इज नॉट रियली द सीलिंग, इट इज अ बॉटम, जैसे कि कल हमने आपको बताया था. तो इसके ऊपर वो बात कर रहे थे और जो है ट्रूडो साहब ने कहा कि भाई हम एलाइज के साथ सपोर्ट जो है यूक्रेन की करते रहेंगे. और कनाडा ने इस मौके पे प्लेज किया है अनदर 500 मिलियन मिलिट्री एड के लिए यूक्रेन के लिए. इनकी बातचीत जो थी वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ चल रही थी, इसके अलावा वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले और बहुत सारे लोगों से मिले हैं. इनकी मुलाकातें यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टॉर्मर के साथ भी हुई हैं. 3 डे का ये विजिट था और ऑन द साइड लाइन ऑफ समिट उनकी काफी मुलाकातें इनके साथ हुई हैं. और अब कहा जा रहा है कि जो कनाडा है यूएस और फिनलैंड के साथ मिलकर कुछ आइस ब्रेकर्स भी बनाएगा. तो मतलब काफी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कमिट नहीं किया है ट्रूडो साहब ने कि 2% ऑफ जीडीपी कब खर्च किया जाएगा मिलिट्री स्पेंडिंग पे. तो ये जो है स्टिकिंग प्वाइंट है अभी भी जो नेटो की समिट हुई है उसमें. प्रीमियर डग फोर्ड साहब जो हैं उन्होंने आज बातचीत कर रहे थे रिपोर्टर्स के साथ एट अ ब्रूरी इन एटोबिको, और उन्होंने कहा जी कि एक डील जो है हम चाहते हैं कि जल्दी एलसीबीओ के वर्कर्स के साथ और यूनियन के साथ हो जाए. और वो कहते हैं कि इनके साथ रीच लेकर नहीं हो पाएगी अगर इफ दे कंटिन्यू टू पुश टू कीप रेडी टू ड्रिंक कॉकटेल्स आउट ऑफ कन्वीनियंस एंड ग्रोसरी स्टोर्स. तो उन्होंने कहा जी कि आज उन्होंने बड़ा एक ऐतिहासिक किस्म का जुमला बोला. उन्होंने कहा द शिप हैज सेल्ड, इट्स हाफ वे अक्रॉस लेक ऑन्टेरियो. उन्होंने कहा जी मैं सैकड़ों ही फ्रंट लाइन एलसीबीओ वर्कर्स के साथ मैंने रिसेंट डेज में फोन के ऊपर बात की है और वो भी वरिड है आरटीडी, यानी कि ये जो मैं आपको बता रही हूं कि रेडी टू ड्रिंक कॉकटेल्स है उनके बारे में. उन्होंने कहा जी कि यूनियन जो वर्कर्स जो है वो कहते हैं कि यूनियन जो है उसने हमारे साथ इन चीजों के बारे में बात ही नहीं किया. इवन यूनियन का जो हेड है उसने भी कुछ नहीं बताया इनको. वो कहते हैं जी कि मैंने जब उनसे बात की एलसीबीओ के वर्कर्स के साथ, वो उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, वेजेस चाहिए. और वो कहते हैं जी कि अभी तक हम दोनों जो हैं टेबल पे नहीं बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसने डील से वॉक अवे नहीं किया था, ये जो इनकी यूनियन थी उसने वॉक अवे किया था. हमने उनको एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया था, उन्होंने प्रपोजल को देखा तक नहीं है. फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उनको जब मैं जिनसे बात कर रहा हूं उनको मैं प्रपोजल भेज रहा हूं और वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा प्रपोजल है, वो बड़े शॉक्ड हैं और वो कहते हैं कि हमें क्यों नहीं ये दिखाया गया. तो आज डग फोर्ड साहब ने काफी ये जो यूनियन है इसको आज खींचा है. एक नया जो है पोल आया है, न्यू लाइजन स्ट्रेटेजीज पोल, जिसमें के पूछा गया है कि टोरंटो की जो मेयर हैं ओलिविया चाओ साहिबा, वो उनके पास कितनी सपोर्ट है, क्योंकि अब एक साल हो गया इनको टोरंटो का मेयर जो है वो बने हुए। तो वो कहते हैं जी कि अगर आज भी लेकिन टोरंटो के अंदर इलेक्शंस होंगे तो ओलिविया चाओ को चूज किया जा सकता है। इनकी अप्रूवल रेटिंग 59% अभी भी है सिटी वाइड, लेकिन जिस वक्त ये ऑफिस में आई थी उस वक्त 73% थी, तो काफी नीचे आ गई है। लेकिन फिर भी अप्रैल के अंदर जो इनकी रेटिंग थी वो 52% पे चली गई थी, जो कि अब फिर से ऊपर आई है 59% पे। ये जो पोल था इसने सर्वे किया था 858 टोरंटो रेजिडेंट्स को बिटवीन जुलाई 7 to 8 इन इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स टेक्नीक, और उसके अंदर वो कहते हैं जी 64% जो है अप्रूवल रेटिंग है इनका जो है डाउनटाउन कोर के अंदर, और नॉर्थ यॉर्क में 63%, स्कारब्रो में 55%, इनकी वीकेस्ट अप्रूवल रेटिंग जो है इटोबिको में है 53%, 41% सिर्फ अप्रूव करते हैं इनका स्टाइल ऑफ मेयरशिप। इसके अलावा उन्होंने जब क्वेश्चन किया कि इन्होंने कैसे हैंडल किया है अपना ट्रांजिट के मसले, तो 74% ने अप्रूव किए, और उन्होंने कहा जी कि इनके दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, तो उसमें भी 67% ने इनको एंडोर्स किया। और लेकिन लोग ज्यादा नाराज नजर आए कि भाई ट्रैफिक कंजेशन के ऊपर ये अभी भी कोई काम नहीं कर सकी हैं, तो ट्रैफिक कंजेशन पे 31% इनको सपोर्ट आई, और क्राइम के ऊपर 42%, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर 30%। तो ओवरऑल जो है वो कहते हैं कि शी इज डूइंग ओके एज अ मेयर ऑफ टोरंटो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने जो है वो कहा है कि जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स थे उनको हम एमनेस्टी दे रहे हैं अगर वो अपना एनकैंपमेंट उठा लेते हैं, और ऑर्गेनाइजर्स जो थे उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि भई आप ये जो कोर्ट का इंजंक्शन आया उसके साथ आप कंप्लाई करते हुए वकेट कर दें किंग्स कॉलेज का जो सर्कल है, लास्ट वीक कोर्ट ने इनको कहा था। तो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भई आप ये एनकैंपमेंट हटाएं, हम आपके खिलाफ ना तो कोई लीगल एक्शन लेंगे, ना डिसिप्लिनरी मेजर आपके खिलाफ लिया जाएगा, ना ही आपकी कंप्लेंट जो है आप जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी वाले इधर बैठे थे उनके खिलाफ हम कोई कंप्लेन करेंगे टोरंटो पुलिस को कि आपने डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया था, कुछ नहीं करेंगे, आप बस एनकैंपमेंट हटाओ। स्टूडेंट्स ने ये एनकैंपमेंट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में May 2nd से डाला हुआ था और हटाया नहीं था, जिसके के बाद यूनिवर्सिटी को कोर्ट में जाना पड़ा था। हमने आपको पूरी स्टोरी वो भी यहां पे सुनाई थी। स्टूडेंट्स का कहना है कि आप डाइवर्स करें उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि प्रॉफिट कर रही हैं इसराइल की जो वॉर है इन गाजा, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स ना करें और हटाएं उनके इंस्टीट्यूशंस की हेल्प करना भी। तो ये उनका मेजर जो था वो मुद्दा था। आज बीसी के अंदर जनाब एक नहीं बेशुमार अर्थक्वेक्स आए, ठीक है आमिर साहब, लेकिन फिर भी सुनामी का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। पहला जो जलजला आया बीसी के अंदर दैट वाज आफ्टर 8 AM, जिसको के रेक्टर स्केल पे मेजर किया गया 6.4 मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे अर्थक्वेक और अर्थक्वेक्स कनाडा जो है उनके मुताबिक भी। इसका जो था सोर्स जो था जो ओरिजिन था वो 209 किलोमीटर फ्रॉम टोफिनो था। बिल्कुल 30 मिनट्स के बाद एक और अर्थक्वेक आया 194 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पोर्ट एलिस और इसका जो मैग्नीट्यूड था 4.3 था। फिर आफ्टर 9:15 एक और अर्थक्वेक आया जिसको के मेजर किया गया 5.4 मैग्नीट्यूड पे 150 किलोमीटर वेस्ट ऑफ टोफिनो था। तो ये तीन जो हैं बैक टू बैक आए और ये उस वक्त आए हैं कि लास्ट वीक भी अर्थक्वेक्स आए थे और ये रिकॉर्ड किए गए थे ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ वैंकूवर आइलैंड। 5.7 मैग्नीट्यूड का आया था July 4th को 150 to 250 किलोमीटर फ्रॉम टोफिनो ये था और उसके बाद भी फिर आफ्टर शॉक्स जो है वो देखे गए थे। तो इस तरह से आज भी जो है काफी जलजले आए हैं बीसी में लेकिन अभी तक कोई आई नहीं खबर के कोई नुकसान हुआ है वहां पे, तो अगर कोई खबर आएगी तो फिर हम आपको जो है बताएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर आज एक ओपिनियन पीस लिखा है यूएस सेनेटर पीटर वेल्श ने और पीटर वेल्श जो है ही हैज बिकम द फर्स्ट डेमोक्रेटिक सेनेटर जिसने कहे बाइडन साहब से कहा है कि आप 2024 के प्रेसिडेंशियल रेस से विदड्रॉ करें। अपने इस ओपिनियन पीस में जो उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है, उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब के साथ लास्ट मंथ जो इनकी डिबेट हुई थी उसमें इनकी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी और जो इनकी डिजास्ट्रस उन्होंने कहा कि डिबेट परफॉर्मेंस थी और हम इग्नोर नहीं कर सकते और डिसमिस नहीं कर सकते जो बहुत सारे लोग वैलिड क्वेश्चन हमको पूछ रहे हैं उस रात के बाद। हाँ, हमें पता है कि इन्होंने हमें ट्रंप साहब से सेव किया था लास्ट टाइम, लेकिन इस दफा क्या वो कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको असेस करना पड़ेगा कि कौन सा जो है बेस्ट कैंडिडेट है टू लीड अस। उन्होंने कहा जी कि ये कंट्री के लिए भी अच्छा है कि ये विदड्रॉ कर लें और उन्होंने कहा जी कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है वो काफी केपेबल है। इसके अलावा और भी बेशुमार जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इलेक्टेबल्स हैं, यंग एनर्जेटिक जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं, सेनेटर्स हैं स्विंग स्टेट्स में, उनमें से कोई जो है पार्टी को लीड कर सकता है। अगर री इलेक्ट हुए बाइडन साहब तो बाय द टाइम ये ऑफिस छोड़ेंगे इनकी एज 86 ईयर्स होगी और लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या उस एज तक बाइडन साहब जो है वो अपना जैसे उनके हेल्थ के मामलात हैं वो चला सकेंगे या नहीं। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है क्रीन जॉन पेरे, उन्होंने कहा था लास्ट वीक के जो बाइडन साहब हैं बिल्कुल प्रेसिडेंशियल रेस से स्टेप डाउन नहीं कर रहे हैं। बाइडन साहब ने भी कहा था कि मैं स्टेप डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो अब इनको सेनेटर साहब को पीटर वेल्स को और कुछ लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं वो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का जनाब आज एक पीस है और इस आर्टिकल के मुताबिक रशिया जो है वो प्रिपेयर कर रहा है मिलिट्री काउंटर मेजर इन रिस्पांस टू द प्लान्ड यूएस डिप्लॉयमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इन जर्मनी। सर्जे ए रेबॉफ ने जो है उन्होंने रशिया के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी कि यूएस का ये जो मूव है इंतहाई डिस्ट्रक्टिव है और ये रीजनल सेफ्टी और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा खराब है और हम मिलिट्री रिस्पांस देंगे विदाउट एनी नर्व्स एंड विदाउट एनी इमोशंस, यानी कि हम दूसरी बार सोचेंगे नहीं और हम जो है हम इसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। एक जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इससे पहले आई थी यूएस जर्मनी की, उसमें कहा था कि वाशिंगटन जो है अब अपने एपिसोडिक डिप्लॉयमेंट्स ऑफ मिसाइल्स जो है वो जर्मनी में करेगा बाय 2026 और ये जो डिप्लॉयमेंट है ये काफी बड़ी होएगी और उसके बाद फिर हौले हौले थ्रू आउट यूरोप जो ये जो है देखी जा सकती है। इसके अंदर जो है नजर आएंगे नॉन न्यूक्लियर SM-6 मिसाइल्स, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स, डेवलपमेंटल हाइपरसोनिक वेपन्स और भी बहुत कुछ। ये सारी बातें जो हैं ये फिर से एक दफा दुनिया को इन्होंने आज याद दिलाई कोल्ड वॉर की, जब इन दोनों ने जो थे वो कम्पीट कर रहे थे ये मिसाइल डिप्लॉयमेंट के अंदर। और आपको पता ही है कि लेट 1970s के अंदर रशिया ने राइट इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप जो था वो सॉरी राइट इन द हार्ट ऑफ यूरोप जो था इन्होंने डिप्लॉय किए थे मिसाइल्स और उसके जवाब में फिर वेस्टर्न यूरोप में अमरीका ने भी अपने मिसाइल्स लगाए थे। तो ये अब जो है चीजें भड़क सकती हैं अगर इनको ना संभाला गया। तो ये जनाब मामला जो है वो चल रहे हैं और ये बड़े काफी खतरनाक हो सकते हैं। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर कीर स्टार्मर, उनकी आज जो है जब समिट खत्म होने से पहले फेस टू फेस मीटिंग्स हुई हैं बाइडन साहब के साथ, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हम रीकमिट करना चाहते हैं नेटो के लिए और उन्होंने कहा जी कि हमारे बड़े स्पेशल रिलेशनशिप हैं यूके और यूएस के बीच में। अब जो रिपोर्टर्स के साथ आज बात कर रहे थे व्हाइट हाउस में स्टार्मर साहब, तो उन्होंने कहा जी कि बाइडन साहब जो हैं उनके साथ और अमरीका के साथ यानी कि हमारे स्पेशल टाइज जो हैं उनको हम बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और हमेशा हम डिफिकल्ट वक्त में साथ खड़े रहे हैं। ये जो इनकी मुलाकातें आपको पता ही है कि 75th एनिवर्सरी समिट जो हो रही है डीसी में उस सिलसिले में हो रही है, उसके बाद ये बाइडन साहब से मिलने के लिए ओवल ऑफिस में चले गए। बाइडन साहब ने कहा कि यूएस यूके के जो टाइज हैं एंड द टू ऑफ अस आर बेस्ट ऑफ एलाइज और यूके की जो ट्रांस अटलांटिक नॉट है इट टाइज नेटो टुगेदर विद यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। कार्ल स्टार्मर ने कहा जी कि हम एक नया सिक्योरिटी पैक्ट करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ और दोनों ने जो है फिर ये फिर से प्लेज किया कि हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पे स्टार्मर साहब ने कहा कि यूके £3 बिलियन पर ईयर का मिलिट्री एड जो दे रहा है कीव को वो कंटिन्यू करेगा और इसलिए उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर बाइडन साहब हैं उनको मुबारकबाद भी दी फॉर होस्टिंग द समिट। इसके साथ उन्होंने फिर बाइडन साहब को स्टार्मर साहब ने आर्सेनल की जो फुटबॉल क्लब की पर्सनलाइज्ड टीम शर्ट है वो इनको गिफ्ट की। बाइडन साहब का सर नेम जो था बैक में था विद नंबर 46 और 46 जो है इट शोज दैट ही इज द 46th यूएस प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ उन्होंने एक कॉपी ऑफ अटलांटिक चार्टर जो कि 1941 में यूएस और यूके के बीच में साइन किया गया था वही वो उन्होंने उसको दिया जिसके बाद नेटो जो थी वो फॉर्म की गई थी और इसके अंदर फीचर करते थे अमेंडमेंट्स फ्रॉम उस वक्त के जो लेबर लीडर थे क्लेमेंट एटली और फॉरेन सेक्रेटरी डेविड एटली की जो थी वो अमेंडमेंट्स उनके उसमें थी। इसके साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी हैं उनकी भी मुलाकातें अपने यूएस काउंटर पार्ट एंथनी ब्लिंकन के साथ हुई हैं। दोनों ने फिर से जो वॉर इन गाजा और यूक्रेन है उसको डिस्कस किया। इंग्लैंड के जो नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं जॉन हीली उन्होंने भी मुलाकातें की यूएस काउंटर पार्ट लॉयड ऑस्टिन के साथ। तो मतलब काफी बड़ा इनका जो है यूके का डेलीगेशन गया हुआ था और उनकी मुलाकातें वहां पे हुई हैं। सीआईए के जो चीफ है जी विलियम बर्न्स अलोंग विद ब्रेट मैकगर्ग एंड यूएस मिडल ईस्ट एनवॉय वो सारे के सारे जो है इजिप्ट में थे और वहां पे इजिप्शियन जो लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उसके बाद ये इसराइल और जॉर्डेनियन काउंटर पार्ट से भी मिलेंगे। बर्न्स की मुलाकात इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ कायरो में हुई थी जिसमें कि उन्होंने इसराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर के टॉक्स है उसकी बात की। इजिप्ट का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसने भी ये कन्फर्म किया है कि बातचीत तो हुई है लेकिन इजिप्ट ने अपनी पोजीशन रखी है कि जिस वक्त तक पूरे का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन इसराइल खत्म नहीं करेगा गाजा स्ट्रिप से उस वक्त तक ये हम अग्रीमेंट को आगे लेके नहीं जाएंगे। हमास जो है उसने काफी अग्रीमेंट शो किया है ये जो नया प्रपोजल आया था लेकिन उसने भी कहा है उसकी भी कुछ रिजर्वेशन है जिसमें कि जाहिर आपको पता ही है कि नेतन्याहू साहब जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी कि सीज फायर के बाद हम फिर से कंप्लीटली हमास को खत्म करना चाहेंगे तो और वॉर कंटिन्यू करेगी। तब जाहिर है इस माहौल में तो बात नहीं हो सकती। हमास के जो पॉलिटिकल चीफ है इस्माइल हानिया उन्होंने कहा है जी कि ये असॉल्ट है और ये डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल वाले। बाइडन साहब ने इससे पहले थ्री फेज एक सीज फायर प्लान दिया था और इसको मीडिएट कर रहे हैं कतर और इजिप्ट। तो इसी सिलसिले में उन्होंने कहा था कि 6 वीक्स का जो है सीज फायर होएगा, ओल्ड सिक एंड फीमेल हॉस्टेजेस जो है उनको इसराइलीज को वापस लाया जाएगा और उसके बदले में इसराइल हंड्रेड ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ेगा। 42 डेज इसराइल के अंदर अंदर इसराइली फोर्सेज जो है विदड्रॉ करेंगी और उसके बाद जो डिस्प्लेस लोग अपने घर में आएंगे। विलियम बर्न्स साहब जो हैं अब वो इजिप्ट से बात करने के बाद कतर में पहुंच गए हैं और कतर में जो है उनकी मुलाकातें अब कतारी ऑफिशियल्स के साथ हो रही हैं। इसके साथ साथ कतर के अंदर जो है मोसाद के चीफ भी आए हुए हैं। तो अब इधर ये जो सारी बातचीत चल रही है इसमें क्या नतीजा निकलेगा लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमें लग रहा है कि चीजें जो हैं वो शायद बेहतरी की तरफ जाएंगी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिसने बहुत दुनिया को चौंकाया कि चलो जी कोई तो सुता या शेर जागे है, ब्लूमबर्ग के मुताबिक हालांकि सऊदीज जो है उन्होंने इसको डिनाई किया बट ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने G7 को थ्रेट किया है कि अगर यूरोप के अंदर ये जो एसेट्स हैं रशिया के उसको आपने छेड़ने की कोशिश की तो फिर जो मिडल ईस्ट में आपके कंसर्न्स हैं यानी कि यूरोपियन यूनियन के हैं उनको फिर जो है उनके साथ भी वैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी धमकी है, बहुत बड़ी धमकी है बट दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। ठीक है जी। अच्छा वो कहते हैं जी कि इन्होंने हिंट किया है किंगडम ने कि कुछ यूरोपियन डेट होल्डिंग्स जो हैं वो बेची जा सकती हैं अगर वेस्टर्न एलाइज ने ये जो रशिया के फ्रोजन एसेट्स एट द ट्यून ऑफ $300 बिलियन जो हैं उनको सीज करके और जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम इसको यूज करेंगे यूक्रेन के लिए किया तो फिर ये मुश्किल है। सऊदी फाइनेंस जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग अपोज किया था वेस्ट का सीजिंग ऑफ फ्रोजन रशियन एसेट्स और उन्होंने कहा जी कि जैसे फ्रांस जो है उसके बहुत सारे डेट्स हैं और उन्होंने स्पेसिफिकली उसका नाम जो है वो किया था और उन्होंने कहा जी कि ये जो थ्रेट्स जो हैं ये आए हैं G7 की जो डिलिब्रेशंस थी इन मई एंड जून जिसमें कि इन्होंने अग्री किया था सारों ने कि ये जो फ्रोजन एसेट्स हैं इसके इनके कंट्रीज में रशिया के उनको जो है वो बेच के और यूक्रेन की वॉर को फंड किया जाएगा। कुछ जो यूरोपियन बैरल कंट्रीज थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा कंसर्न शो किया था, उन्होंने कहा था कि ये चीजें जो है ये डिस्टेबिलाइज करेंगी और यूरो को भी ये वीकर करेंगी। लास्ट मंथ G7 ने एग्री किया था कि वो यूक्रेन को 50 बिलियन यूएस डॉलर का लोन देंगे बाय ईयर एंड, और ये जो फ्रोजन एसेट्स हैं इनके इंटरेस्ट से लेके ये सारा पैसा उनको देंगे। सऊदी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने सारी की सारी इस चीज को डिनाई किया, उन्होंने कहा कि ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, हमने कोई G7 को या किसी को भी हमने कोई धमकी नहीं दी, हमारा रिलेशनशिप इनके साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर है और हम हर तरह का इशू जो है वो डिस्कस करते हैं, ग्लोबल ग्रोथ और जो रिजिलियंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके एनहांसमेंट के लिए। लेकिन अभी तक सऊदी ने ये जो यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही है उसमें आगे आके रशिया को कंडेम नहीं किया है, और ये जो अभी ग्लोबल पीस समिट हुई थी यूक्रेन के सिलसिले में स्विट्जरलैंड में उसमें भी नहीं गए थे, और बल्कि इस पीस समिट को की जो ज्वाइंट कम्युनिके आई थी उसको भी साइन करने से इनकार कर दिया था जिसमें कि रशिया को कंडेम किया था। और लेकिन इसने खुद से इंटरनेशनल समिट जो थी यूक्रेन के ऊपर करवाई थी इन अगस्त 2023, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था रशिया से 300 लोगों को छुड़वाने का जो कि प्रिजनर्स थे और उनको यूक्रेन के हवाले किया था इन सेप्टेम्बर 2022। तो उसने यही कहा कि हम पीस के लिए काम करेंगे, वी आर नॉट पार्टी टू एनीबडी एंड वी आर नॉट थ्रेटिंग एनीबडी। अलबत्ता लेकिन फिर भी ब्लूमबर्ग जो है वो भी जनाब बहुत बड़ा अदारा है, तो ऐसे बगैर वेटिंग के तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी कुछ छापा होगा, कोई तो खबर उनके पास होगी। बहरहाल सऊदी ने आज इसको बिल्कुल न बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जनाब एक और भी खबर आई है और ये भी बहुत ज्यादा आंखें चौंका देने वाली है, और इसके मुताबिक जो है क्योंकि आपको हंसी आएगी ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा, कि ईरान जो है वो अभी भी न्यूक्लियर टॉक्स जो है यूएस के साथ कर रहा है थ्रू ओमान। ईरान के जो एतिमाद न्यूज़पेपर है उसने कोट किया है ईरान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर को एज सेइंग दैट दिस इज गोइंग ऑन, अली बागेरी कानी के उन्होंने कमेंट्स जो हैं वो कोट किए हैं, जिसमें कि व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन ने जिसमें जब इससे पहले कहा था कि जी यूएस बिल्कुल कोई न्यूक्लियर टॉक्स ईरान के साथ नहीं कर रहा है, अली बागेरी साहब ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, ओमान के थ्रू हमारी बातचीत उनके साथ जारी है। ये सारी टॉक्स जो हैं ये अब आगे शायद बढ़ाई जा सकती है, रिज्यूम की जा सकती है अंडर न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मसूद पिज़क्शियां। कानी ने कहा जी कि इनडायरेक्ट टॉक्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनकी हम डिटेल्स आपको नहीं बता सकते हैं। पिज़क्शियां के बारे में आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि ईरान के रन ऑफ जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे लास्ट वीक उसमें वो जीते थे, और जीतते सार ही उन्होंने कहा था कि वो एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे और ये जो टेंशन हैं यूरोपियन पावर्स के साथ उसको ईज करने की कोशिश करेंगे, और 2015 की जो न्यूक्लियर पैक्ट था जो कि ओबामा साहब ने आपको पता ही है चलाया था उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, जिसको के जो है वो कर दिया था, रोक दिया था इन्होंने ट्रंप साहब ने, और उन्होंने ये कहा। लेकिन 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 इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता है, वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाए वो डिसाइड करते हैं। तो अब अगेन ये खबर ठीक है नहीं है जनाब, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगी, लेकिन बहरहाल खबरें ये जो हैं आज की काफी सीरियस हैं, काफी सीरियस हैं। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय विलेज टेस्ट, और फैसल चट्टा साहब होते हैं यहाँ पे विलेज टेस्ट पे ऑन्टेरियो का, कहते हैं जी लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे हम चलाते हैं, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, एक है 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में, इसका नंबर है 9052323663, दूसरा है ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट, और इसका नंबर है 9052262294। एंड जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल, यहाँ पे 1400 बंदा प्लस ढाई बंदा आप बिल्कुल बुला सकते हैं, 32 रूम लग्जरी होटल है, बड़ा ही आइडियली लोकेटेड है, 2935 ड्रू रोड मिसिसागा में। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अपने कुछ वेडिंग या लार्ज इवेंट्स या कॉरपोरेट या घर के कोई भी इवेंट्स करने हैं तो आप इनको कॉल कर लें, कॉल कर का नंबर है जी 6479653823। एंड राजा ते बादशाह जी ऑल स्टेट में होते हैं और कहते हैं जी मैं आपको राइट कवरेज दूंगा, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी ये देते हैं घर की और गाड़ियों की, तो वो कहते हैं जी मुझे कॉल कर लें आप और ऑल स्टेट में जो बेस्ट आपको डील है मैं दूंगा, इनका नंबर है 6472903773। ठीक है जी, ये है इनका नंबर। ओके जी, पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने आज वेलकम किया अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव को, جو کہ اسلام آباد میں پہنچے ہیں ٹو ڈے آفیشیل وزٹ کے اوپر. پرائم منسٹر نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ یہ یہاں پہ پاکستان کا وزٹ کریں. ان کا طیارہ جو تھا لینڈ کیا تھا پاکستان ایئر فورس کے نور خان بیس کے اوپر اور ان کو ریڈ کارپیٹ ویلکم دی گئی تھی. پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ تھے الانگ ود انٹیریئر منسٹر محسن نقوی. ان کو 21 گنز کی سلامی جو ہے وہ بھی دی گئی تھی. اب ان کی ملاقاتیں نہ صرف پرائم منسٹر بلکہ پریزیڈنٹ زرداری سے اور چیف آف آرمی اسٹاف آسم منیر کے ساتھ بھی ہوئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک ان کے آنر میں رات کا ڈنر بھی دیں گے. ظاہر ہے ڈنر رات کو ہی ہوتا ہے ڈنر تو ایسا ہے. تو علی ایف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میں پاکستان میں آیا ہوں اپنے جو کوآپریٹو بائی لیٹرل کوآپریشن کی باتیں جو ہے ان کو آگے بڑھانے کے لیے اور بہت سارے ایم او یوز جو ہیں سائن کیے جا سکتے ہیں. جو ہیں کافی سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ان کے فارن منسٹر بھی ہیں, ان کی بھی ملاقات جو ہے پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ ہوئے گی فارن آفس کے اندر. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ان دا نیکسٹ 5 منتھس بہت سارے ہیڈز آف دا اسٹیٹ جو ہیں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ آئیں گے اور وزٹ کریں گے. سعودی جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان وہ بھی آ سکتے ہیں. یو اے ای کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زائد ال نہیان, قطر کے امیر تمیم الثانی, ترکیے کے پریزیڈنٹ اردوغان, یہ سب جو ہیں ان دا نیکسٹ 5 منتھس پاکستان کا چکر لگا سکتے ہیں. اپریل میں اس سال جو فارمر اور جو جن کی شہادت ہو گئی تھی ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی, انہوں نے بھی وزٹ کیا تھا اسلام آباد کا 3 ڈیز کے لیے. تو کافی یعنی کہ جو ٹریفک ہے وہ بڑھ گئی ہے اسلام آباد میں, ہے جی. تو لگ رہا ہے کہ ٹوریزم بھی شاید اب بڑھے گی انشاءاللہ. ایسے پاکستان نے کہا ہے کہ ہم بالکل ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی بھی ڈائیلاگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگ نہ صرف پاکستانیوں کے بلکہ فارن نیشنلز کے بھی قتل میں شامل ہیں. فارن آفس کی سپوکس پرسن ممتاز زہرا بلوچ جو ہیں وہ آج اپنی ویکلی نیوز بریفنگ اسلام آباد میں رپورٹرز کو دے رہی تھی. اس پہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ افغانستان بھی ایسا کرے, لیکن افغانستان کی اتھارٹیز کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ یہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں انہوں نے سینکچریز بنائی ہوئی ہیں آپ کے ملک میں اور وہ اس کو ایز لانچ پیڈ یوز کرتے ہیں پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے, لیکن افغانستان نے کچھ نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ان لیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان کا کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل یہ پورا چل رہا ہے زور و شور سے. جتنے بھی ان لیگل ریزیڈینٹس ہیں ان کو کہا گیا ہے جن کے پاس ڈاکیومینٹس نہیں ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں گے. بہت سارے ملکوں کے جو یہاں پہ ان لیگل ریزیڈینٹس تھے ان لیگل امیگرینٹس تھے وہ چلے گئے ہیں اپنے ریسپیکٹو کنٹریز میں اور افغانستان کے جو ہیں بہت سارے چلے گئے ہیں اور کچھ ابھی جائیں گے. تو فرسٹ فیز جو ہے اس کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ یو این ایچ سی آر جو ہے یعنی کہ یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز ان کو آپ نے اس پلان کے بارے میں کیا کہا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو بالکل کوئی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دی کہ ہم یہ پلان سسپینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ہم نے بتایا ہی تھا کہ تھوڑے دن پہلے جو ہے ایس سی او کی میٹنگ میں بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اب ریفیوجیز کا تھوڑا جو ہے وزن اٹھائے, ہم بہت زیادہ ہم اس کا بوجھ اٹھا چکے ہیں تو یہ برڈن اب ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. یہ خبر ہم نے آپ کو ایک دن پہلے بھی سنائی تھی لیکن آج یہ پھر سے جو ہے شہباز شریف صاحب نے چونکہ اس کے اوپر اب پھر سے قسم لی ہے تو پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ آپریشن عزم استحکام جو تھا شروع کیا گیا تھا جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کو اس لیے شروع کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اس کے اندر بہت سارا ملک کے اندر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم آ رہا ہے. اس کے اوپر بہت ساری اپوزیشن جو تھی انکلوڈنگ پی ٹی آئی انہوں نے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں سے کچھ اچھا نہیں آئے گا. اب جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پھر سے آج جو ہے وہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ کیبنٹ ممبرز اور جو ہمارے ایلائز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا اور یہ جو نیشنل ایکشن پلان فار سینٹرل اپیکس کمیٹی جو ہے اس کے آگے رکھا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ کیبنٹ جو ہے اپروو کرے ان کے ڈیسیجنز کو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں پی ٹی آئی, جے یو آئی ایف, اے این پی, جے آئی, پی 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 آف کورس, ان کی ایل آئی, ان سب کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے گی اور ان سے کنسلٹیشنز کیے جائیں گے اور ان سے جو ہے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ایک لمیٹڈ آپریشن ہے جس میں کہ میس ایویکشنز کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو پارلیمنٹ میں لا کے اس کے اوپر بحث ہوگی. آج کی جو بات تھی وہ یہ تھا کہ وہ اس پہ ڈسکشن کریں گے اور کنسنسس بلڈ کریں گے. عمران خان جو ہے انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہیں اس یہ جو ایک آل پارٹیز کانفرنس اے پی سی جو بلائی جا رہی ہے اس کے اندر ان کی پارٹی بیٹھے گی اور وہ انیشیٹو کو سپورٹ کریں گے. تو شہباز شریف صاحب نے اس کا جو ہے وہ شکریہ بولا اور انہوں نے کہا جی کہ لیکن پارلیمنٹ میں ڈسکشن اس کے اوپر کی جائے گی سو دیٹ ایوری بڈی از آن بورڈ. सुप्रीम कोर्ट जो है जी अब उसने अनाउंस किया है कि पीटीआई बैक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपील है ऑन रिजर्व सीट्स वो कल फ्राइडे के दिन जो है वो सुबह 9 बजे सुनाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो था उसने दूसरा आज सेशन जो था किया था और फिर ये जो बात थी ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा जो है वो हेड कर रहे थे स्पेशल सेशन ऑफ कोर्ट 13 मेंबर फुल बेंच और ये मीटिंग जो थी उसने कहा कि जी ये जो रेगुलर 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं ये पैनल को जो है लेके आगे चलेंगे विच विल बी लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ईसा और वो जो है ये इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि एसआईसी ने एक प्ली डाली थी जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था पिशावर हाईकोर्ट का डिसीजन अपहोल्डिंग ईसीपी तो उसमें उन्होंने कहा था जी कि अब सुप्रीम कोर्ट हमारा ये सुने। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 9 हियरिंग्स अभी तक इनकी सुनी है और अब फिर उन्होंने कहा था दूसरी पार्टीज भी जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आप भी अपने आर्ग्यूमेंट्स दें अगेंस्ट एसआईसी प्ली और अब ये सारे आर्ग्यूमेंट्स चूंकि पूरे हो गए हैं तो इसलिए अब इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। इमरान खान का जो जेल ट्रायल है इन 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस उसमें जनाब आज जो फॉर्मर केपी के चीफ मिनिस्टर हैं परवेज खटक साहब वो आज अडयाला जेल में पहुंचे थे टेस्टिफाई करने के लिए बिफोर द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट और आपको पता ही है कि पीटीआई से उन्होंने अपने रास्ते जो हैं वो जुदा कर लिए थे उसके बाद अपनी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली थी। उन्होंने जो है इमरान खान की गवर्नमेंट में एज डिफेंस मिनिस्टर भी सर्व किया था। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने अप्रूव किया था ये कॉन्फिडेंशियल डीड जो थी टू ट्रांसफर मनी जो कि सीज की गई थी यूके से टू बहरिया टाउन के ओनर मलिक रियाज और उसमें उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी आपने जो है टेस्टमनीज लिए हैं जैसे कि आजम खान की टेस्टमनी ली गई थी साइफर केस में और ओन चौधरी की इद्दत केस में तो अब इनकी बारी आई थी। आज 15 मिनट ये बोल रहे थे इन फ्रंट ऑफ जज मोहम्मद अली वड़ाइच और उन्होंने कहा जी कि कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया था इस कॉन्फिडेंशियल डीड का। उन्होंने अलेज किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने इस डील से बिलियंस ऑफ रुपीस और हंड्रेड्स ऑफ कनाल्स ऑफ बैरिया टाउन लिमिटेड जो है वो इलीगली इन्होंने ली थी। उन्होंने कहा जी कि दिसंबर 2019 में एक मीटिंग हो रही थी जहां पे के अकाउंटेबिलिटी एडवाइजर मिर्जा शहजाद अकबर जो हैं वो एक सील्ड एनवलप इस डीड की कैबिनेट अप्रूवल के लिए लाए थे और मैंने जब उनसे पूछा तो अकबर ने कहा कि ये गवर्नमेंट की डील है विद एनसीए टू रिफंड क्राइम प्रोसीड्स। तो कुछ जो कैबिनेट के मेंबर्स थे उन्होंने अकबर को कहा था कि आप ये डिस्क्लोज करें डॉक्यूमेंट्स लेकिन उसने रिफ्यूज किया था उसने कहा ये कॉन्फिडेंशियल है। तो ये जो प्रोसिक्यूशन ने विटनेसेस सामने लानी थी जुबैदा जलाल नदीम चंद अफजल चंद आजम खान ये आज कोर्ट में नहीं आए थे और इसीलिए हियरिंग को अब एडजर्न किया गया है जुलाई 13 के लिए। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि जो परवेज खटक साहब थे वो काफी क्लोज थे खान साहब के तो इन्होंने आज बड़ी खिलाफ जो है ये बात की है इमरान खान साहब के तो पता चलेगा कि असल में सच क्या है। इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने कहा जी कि अब हम एक स्पेशल सेल सेटअप कर रहे हैं टू मॉनिटर सोशल मीडिया एप्स लाइक व्हाट्सएप टू कर्ब हेट मॉन्गरिंग ड्यूरिंग मुहर्रम। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी यानी कि आईसीटी की जो पुलिस के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी कि ये जो एआईजी ऑपरेशंस हैं वो सुपरवाइज करेंगे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को और अगर कोई भी बंदा इन्वॉल्व पाया गया हेट्रेड को स्प्रेड करते हुए तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि ये सारा जो काम है ये आशूरा के बीच में किया जाएगा क्योंकि अभी 10 मुहर्रम जो है करीब आती जा रही है। मुहर्रम शुरू हुआ था जुलाई 8 से और फेडरल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उन्होंने पहले ही फेडरल गवर्नमेंट को कहा था कि आप जो ये 6 सोशल मीडिया एप्स हैं इनको एटलीस्ट फॉर अ वीक ड्यूरिंग मुहर्रम जो है उसको सस्पेंड करें। फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन तो नहीं लिया है लेकिन इसके ऊपर वो जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है जी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है आईएमएफ की जो ये डिमांड थी कि जी टैक्सेस इम्पोज किए जाएं एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। सोर्सेज जो हैं उनके मुताबिक जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं सिंध पंजाब बलूचिस्तान और केपी की गवर्नमेंट के साथ आईएमएफ की डायरेक्ट बातचीत भी हुई थी और ये बातचीत जो थी इट वॉज अटेंडेड एंड बाय फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि टैक्स हैवी जो ये फाइनेंस बिल 2024 आया है जो कि अब जुलाई 1 से शुरू हो गया उसमें बड़ा चैलेंजिंग 13 ट्रिलियन रुपीज का टैक्स रेवेन्यू टारगेट उन्होंने रखा था अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रिक्वायरमेंट्स और उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चरल इनकम अगर एक्सीड करेगी 600,000 पर ईयर से तो उसके ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे। तो अब प्रोविंसेस जो हैं उनकी इस बात को मान गए हैं। सऊदी अरेबी एयरलाइन जो रियाद से आई थी उसको जो है आग लग गई लैंड करते हुए एट पिशावर के बच्चा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अकॉर्डिंग टू सीए स्पोक्सपर्सन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने जो स्मोक और स्पार्क्स जो थे लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए देखे थे फ्रॉम द लैंडिंग गियर, और फिर अलर्ट किया था पायलट को। इसके अलावा जो एयरपोर्ट फायर और रेस्क्यू सर्विसेज वाले थे वो भी वहां पे भाग के आ गए थे, और सीए का जो फायर व्हीकल एक्सटिंग्विश करने आ गया था फायर को। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है 276 पैसेंजर्स थे इसके अंदर, वो सारे के सारे सेफ हैं, और 21 क्रू मेंबर्स थे वो भी सारे सेफ हैं, और इनको एक इन्फ्लेटेबल स्लाइड से बाहर सबको निकाल दिया गया था। और तैयारे को तो नुकसान जो है वो है, लेकिन बंदे सब जो हैं वो बच गए हैं। अच्छा जनाब, ये जो है ये द प्रिंट की स्टोरी है, और ये आज काफी खतरनाक है, और क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब ये हिंदुस्तान में कहने लगे हैं कि चूंकि चाइना के साथ आपकी लड़ाई चल रही है तो आप अपनी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो बढ़ाएं। इंडिया जो है उसका बाउंड्री का कन्फ्रंटेशन जो है आपको पता ही है एलएसी के ऊपर काफी देर से चाइना से चल रहा है, तो मोदी जी को अब लोग कह रहे हैं कि जाके जवानों से मिलने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप तो बार बार कह रहे हो, मोदी जी कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी के ऊपर पीस आना चाहिए और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो है खत्म होने चाहिए, लेकिन फिर भी वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि फुल फ्लेज्ड वॉर इन दोनों के बीच में नहीं हो सकती है, और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी भी ये बिलीव करती है कि चाइना अटैक इंडिया पे नहीं करेगी, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी रह सकती है क्योंकि चाइना की बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर हो गई है टुवर्ड्स इंडिया स्टेटस को, क्योंकि कुछ इलाकों पर उसका कब्जा भी है। वो कहते हैं जी कि ये सलामी स्लाइसिंग कर रहा है, यानी कि हौले 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 थोड़ा थोड़ा इलाका हिंदुस्तान का सलामी की तरह काट काट के अपने इलाके के अंदर बढ़ाता जा रहा है, और अभी तक उसने इंडिया चाइना ने फुल मेन्यू दिखाया नहीं है चाइना को। तो अगर और कुछ इलाके लिए तो और इंडिया ने रिएक्ट किया तो एक फुल फ्लेज्ड वॉर जो है वो हो सकती है, जैसे कि साइनो इंडियन वॉर हुई थी 1962 में। इंडियन आर्मी के जो चीफ थे उस वक्त के जनरल तिमाया, उन्होंने वार्न किया था नेहरू साहब को कि नेहरू साहब चाइना पे हमला कर सकता है, लेकिन नेहरू साहब की लीडरशिप ने उस वक्त कोई खास ध्यान नहीं दिया था और चाइना ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाते हुए जो है लड़ाई शुरू कर दी थी। तो इस वक्त जो लोग हैं अब हिंदुस्तान के अंदर जो मिलिट्री के साथ रिलेटेड हैं वो कहते हैं कि आपको भी अपना मिलिट्री स्पेंडिंग जो है बढ़ाना चाहिए। आपको हमने बताया था कुछ दिन पहले सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसके के मुताबिक टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है इट इज टचिंग 2,443 बिलियन इन 2023, विच इज 6.8% अप फ्रॉम 2022। यूएस जो है सबसे ज्यादा मिलिट्री पे खर्च करता है और उसने और भी बढ़ा दिया है 2.3% से, तो एट द मोमेंट यूएसए सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है मिलिट्री के ऊपर। 916 बिलियन यूएस डॉलर्स उसने स्पेंड किए थे 2013 में। चाइना नंबर टू पे आई स्पेंट 296 बिलियन इन 2023, विच इज अप 6% फ्रॉम 2022। रशिया नंबर थ्री पे 24% उसने स्पेंडिंग बढ़ाई है टू 109 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2023। और जो है इसके अलावा ये जो है स्पेंडिंग 57% ज्यादा है सिंस 2014। इसराइल जो है उसने भी अपनी स्पेंडिंग जो है 24% से बढ़ाई है एंड इट इज टचिंग नाउ 27.5 बिलियन इन 2023। अलबत्ता इस लिस्ट के अंदर नंबर वन पे है यूएसए, नंबर टू चाइना, रशिया, और नंबर चार पे अब हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर। 2023 में इसने स्पेंड किए थे 83.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, विच इज अप 4.2% देन 2022। लेकिन अब मोदी जी को कहा जा रहा है कि मोदी जी आप थोड़ा और भी खर्च करो, तो जाहिर है अब ये ज्यादा खर्च करेंगे मिलिट्री पे तो उस पर तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो अब होने दो फिर, अब क्या कर सकते हैं। जो एजेंसीज हैं, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल है इंडिया में, उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा आवाजें उठा रहे हैं कि भाई ये किस तरह का इनका रोल है, ये किसी के खिलाफ भी, जैसे कि चीफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दूसरे, उनके खिलाफ ये कर रहे हैं। आज भी उसी सिलसिले में, अब पता नहीं है इसमें सच कितना है, लेकिन लोगों ने आज फिर शोर मचाया। सीबीआई ने चार्ज किया सिस्टर एंड नेफ्यू ऑफ फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ इन अलेज फ्रॉड केस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 354 करोड़ रूपीज इन्वॉल्विंग देयर एंटरटेनमेंट कंपनी मौसर बायर। इनको जो है चार्ज किया गया है नीता पुरी को, जो कि को डायरेक्टर है इसकी मौसर बायर की, और इनके बेटे रतुल को, और उनको कहा है जी कि बाकी सारे कुछ लोगों ने भी इनकी कंपनी ने चीट किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो थी उसने असल में कंप्लेन की थी अगस्त 16, 2019 को कि मोसर बायर जो है और उसके डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स बहुत ज्यादा बैंक को नुकसान कर रहे हैं और उन्होंने बैंक से 354.51 करोड़ रुपीज जो हैं लिए थे इन नवंबर 29, 2014 और अभी तक वापस नहीं किए। उसके बेसिस पे सीबीआई ने फिर जो है ये आज इनको चार्जशीट किया है और उसी के बेसिस पे एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब जो है वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बिठाई है और उसके बाद फिर इन्होंने अब अरेस्ट किया है रतुलपुरी को। रतुलपुरी को पहले इन्होंने कर लिया था जो है 2019 में, लेकिन इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब अब बिठाई है। उस वक्त भी ये मनी लॉन्ड्रिंग की ही थी जिस सिलसिले में रतुल साहब को पकड़ा था और इनको बुलाया गया था। असल में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फॉर अलेज्ड ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम और फिर उसके लिए इन्होंने फिर इनको पकड़ लिया कि आपके ऊपर अब दूसरी भी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोब जो है वो चलाए जाएंगे। तो पायान हिंदुस्तान दे विच भी वही चल रहा है ते पाकिस्तान विच भी वही चल रहा है। पढ़ पढ़ के ऑपोजिशन दे बंदे अंदर तुसी कीते हैं पायान व्हाट इज दिस है जी। अच्छा जी, आज आ गई है हमारे पास हमारी बाजी की खबर और बाजी कौन है हमारी? कंगना रनावत है जी। कंगना रनावत साहिबा ने कहा है कि मैं तो ये अवार्ड शोज जो होते हैं मैं उसमें इसलिए नहीं जाती हूं क्योंकि ये तो लोगों ने टीआरपीज के लिए किए होते हैं और स्टार परफॉर्मेंसेज होती हैं और फिर जो है उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं तो मैं ज्यादा भाव नहीं देती इनको, ये ज्यादा कोई ऐसे कोई बहुत कोई वाओ इवेंट्स नहीं होते। अब इमरान हाशमी से लोगों ने पूछ लिया, उन्होंने कहा जी कि आप भी नहीं जाते हो बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज में, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ये खराब होती हैं ये अवार्ड जो शोज हैं यानी कि बकवास हैं ये अवार्ड शोज जो हैं? तो इमरान हाशमी ने कहा जी कर्नल रनावत साहबा ने इसलिए कहा है क्योंकि उनको जो है अब अवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं बड़े अरसे से और मुझे तो खैर याद ही नहीं है कि मुझे लास्ट अवार्ड कब मिला था। मैं किसी को जो है वो डिस नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर कोई लोग अपने लिविंग रूम्स को डेकोरेट करना चाहते हैं अवार्ड से तो जरूर करें, मैं तो नहीं करना चाहता हूं और मुझे तो पता भी नहीं है मुझे कभी कोई अवार्ड मिला भी है तो आई डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन उन्होंने जो कंगना के बारे में कहा, इमरान साहब आपकी खैर नहीं, बाजी अब आएगी आपके पीछे। ठीक है जी। और जनाब विंबलडन 2024 चल रहा है और इस दफा दुनिया के बेशुमार सितारे इंक्लूडिंग बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स जो हैं विंबलडन देखने के लिए गए हैं। वहां पे आमिर खान साहब भी लोगों को नजर आए और जब आमिर खान साहब नजर आए तो जाहिर है कि लोगों ने उनसे पूछा कि आमिर खान साहब आप बताओ आपका विंबलडन के साथ क्या प्यार है। उन्होंने कहा हां जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं टेनिस खेलता था लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे मना कर दिया तो मैंने जो है मैं छोड़ दिया। स्टोरी यह है कि ये जिस वक्त छोटे थे तो जूनियर लेवल पे खेलते थे इंडिया के लिए टेनिस और महाराष्ट्र स्टेट के चैंपियन थे और वो कहते हैं कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बड़े सिग्निफिकेंट लेवल पे चला जाता लेकिन मुझे गेम चूंकि बहुत पसंद थी मुझे बड़ा मजा आता था तो मैं इसलिए खेलता था लेकिन अचानक आउट ऑफ द ब्लू वन डे माय फादर केम और उन्होंने मुझे रोक दिया ये गेम खेलने से तो मैंने फिर उसके बाद गेम नहीं खेली लेकिन मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं आई एम हैप्पी वेयर आई एम। तो जाहिर है भाईजान आप तो इन्हें तो हैप्पी होना है, हैप्पी क्यों नहीं होना आपकी बड़ी बात है। ए रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी आज जनाब बहुत ही मेजर किस्म की अंदर की खबर सुनाई है। उन्होंने कहा जी कि माइकल जैक्सन साहब मरने से पहले 2019 में हमारे लिए गाना गाने वाले थे। एक जो है फैंस मीट एंड ग्रीट जो मलेशिया में चल रहा है उसमें ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि जैक्सन साहब जो हैं वो शंकर जो फिल्म बना रहा था रजनीकांत और ऐश्वर्या रॉय के साथ अंथीरन उसके अंदर गाना गाने वाला था। रहमान साहब कहते हैं जी कि मैं 2019 में लॉस एंजलिस में था और मुझे एक आदमी से इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि माइकल जैक्सन को जानता था तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरी मुलाकात उससे कराओगे तो उसने ईमेल भेजी लेकिन उसका कोई भी एक हफ्ता हो गया और रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद इनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया फॉर जय हो फ्रॉम स्लम डॉग मिलियनेयर और माइकल जैक्सन की टीम ने फौरन जो है रिवर्ट किया और उन्होंने कहा जी वो आपसे मिलना चाहते हैं। रहमान साहब कहते हैं मैंने उनको कहा जी अब मैं नहीं मिलूंगा जब तक मुझे ऑस्कर नहीं मिलेगा। उसके बाद जब मुझे ऑस्कर मिला तो मैं उनको एलए में मिलने के लिए उनके घर पे गया। ही वॉज वेरी काइंड और मैंने उनसे कहा कि आप हमारे लिए क्यों नहीं गाते तो उन्होंने भी कहा कि हाँ लेट्स डू ये जो है वी आर द वर्ल्ड इसको हम जो है इकट्ठे गा सकते हैं। मैं जब इंडिया वापस आया तो मैंने शंकर को कहा कि जो है ये तुम माइकल जैक्सन से कोई गाना गवाना चाहते हो क्योंकि किंग ऑफ पॉप था उस जमाने में। उसने कहा कि हाँ एंथीरन के लिए तो मैं तमिल गाना उससे गवाना चाहता हूं तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली रहमान साहब कहते हैं जी कि माइकल जैक्सन की उसी साल जून में डेथ हो गई और फिर ये सारे का सारा कारोबार धरी का धरा रह गया। और जनाब फीफा ने तो फटे चके हुए हैं। क्यों? पाकिस्तानी गाने पे गाना उठाए जा रहे हैं, पायन व्हाट इज दिस फीफा, यू आर पिकिंग अप आवर सॉन्ग्स। पहले तो खाली इंडिया हमारे गाने उठाता था, हैं अभी आप भी उठा रहे हो, लेकिन एनीवेज वेरी गुड। फीफा ने जनाब एक दफा और पाकिस्तानी पंजाबी सॉन्ग जो है वो टिकटॉक पे डाला है और इस दफा वो सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंच फुटबॉलर एम्बैपे को। 25 इयर्स एज है इनकी और बड़े डैशिंग किस्म के प्लेयर हैं। वो सेलिब्रेट इससे पहले जब कर रहे थे अर्जेंटीनियन फुटबॉलर मेसी की बर्थडे को, तो जो हमारे फोक सिंगर है आरिफ लोहार, उसका 2023 का जो हिट सॉन्ग था आ, उसको इन्होंने लगाया था। इस वक्त इन्होंने ये जो फीचर किया गाना, ये पाकिस्तानी गाना है ब्लॉक बस्टर, और इसको इन्होंने यूज किया है टू सेलिब्रेट एम्बैपेज एंट्री ऑन फील्ड। ये सॉन्ग जो है कंपोज किया है, राइट किया है पाकिस्तानी जुल्फिकार जब्बार खान, जिसको जुल्फी कहते हैं, उमेर भट्ट है इस गाने में, फारिस शफी, शमरोज भट्ट हैं। इसकी जो कैप्शन डाली है फीफा ने, एम्बैपेज ब्लॉक बस्टर एंट्री, क्योंकि गाने का नाम ही ब्लॉक बस्टर है। तो जुल्फी जो है उसने भी अपने इंस्टाग्राम पे लिखा, फ्रॉम कोक स्टूडियो पाकिस्तान टू फीफाज ग्लोबल स्टेज आवर ब्लॉक बस्टर जस्ट अपियर्ड एट फीफा। अब बहुत ही प्यारा गाना है, आप सुने अगर आप सुन सकते हैं तो। शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं उनके बारे में अब बहुत सारी बातें आना शुरू हो गई हैं और कहा है जी कि वर्ल्ड कप से पहले और जो इंग्लैंड का टूर था उसके अंदर जो बैटिंग कोच थे मोहम्मद यूसुफ, उनके साथ इनकी जो है बड़ी गर्मा गर्मी चलती रही, और उसके बाद फिर कोचेज ने और मैनेजमेंट ने शिकायत की चेयरमैन पीसीबी को कि इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, और अभी जो गैरी क्रिस्टन है उनको भी इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है वो कहते हैं जी हीट ऑफ द मोमेंट में हुई थी और उसके बाद सब ठीक हो गई थी, मगर हुआ क्या हुआ, ये कि शाहीन शाह अफरीदी साहब जो है बॉलिंग कर रहे थे नेट्स में हेडिंगली में, और यूसुफ ने पॉइंट आउट किया कि तुम बेतहाशा नो बॉल्स कर रहे हो। इसके ऊपर शाहीन शाह बड़े गुस्से हो गए और उन्होंने यूसुफ को कहा कि आप मुझे करने दो जो मैं करता हूं। यूसुफ ने कहा कि और यूसुफ साहब आप अपना जो है ना यू माइंड योर ओन बिजनेस, यूसुफ ने कहा कि मैं तुम्हारा कोच हूं और इट इज माई जॉब टू टेल यू जिस वक्त तुम गलती करोगे। उसके बाद सीनियर मैनेजर वहाब रियाज जो है उन्होंने भी बहुत ज्यादा डांटा शाहीन शाह अफरीदी को और उन्होंने कहा कि कोच से बात करने का यह तरीका जो है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। फिर शाहीन शाह ने अपनी गलती मानी और जाके मोहम्मद यूसुफ को सॉरी बोला। तो गर्मा गर्मी चल रही थी जनाब बड़े अरसे से। फॉर्मर पाकिस्तान फास्ट बॉलर सरफराज नवाज जो हैं उन्होंने कहा जी कि पीसीबी को एक कंप्लीट स्वीपिंग ओवरऑल करना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी का, ये एक दो बंदों को सैक करने थे जैसे वहाब और रजाक जो है वो इनफ नहीं है, और ये जो एंटायर ग्रुप है ये इंतहाई नालायक है, इस इंतहाई पूरे ग्रुप को जो है आपको देखना पड़ेगा। एटलीस्ट जो है उन्होंने कहा जी 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी आप बनाएं और उसके बाद आप देखें जो प्रॉपर लोगों के साथ के कैसे टीम को खिलाना है और बोर्ड जो है उसकी भी मैनेजमेंट आगे लेके कैसे जानी है। उन्होंने कहा जी कि टेस्ट टीम को जो है मैं सोचता हूं कि शान मसूद को लीड करना चाहिए और व्हाइट बॉल जो फॉर्मेट है उसमें मोहम्मद रिजवान को लीड करना चाहिए बिकॉज ऑफ मोहम्मद रिजवान्स प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है जी। और जनाब जैसे कि आमिर साहब आपको बता रहे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम इज अनलाइकली टू विजिट पाकिस्तान फॉर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इन फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर, और इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी डिटेल्स ये हैं कि जी बीसीसीआई ने अब रिक्वेस्ट किया आईसीसी को कि ये तमाम के तमाम मैचेस दुबई या श्रीलंका में करें। लास्ट ईयर पाकिस्तान ने होस्ट किया था एशिया कप, लेकिन हिंदुस्तान जो था उसने अपने तमाम के तमाम मैचेस जो थे श्रीलंका में किए थे, और इस वक्त भी वो कह रहे हैं कि जी एक हाइब्रिड सिस्टम जो है वो किया जाए। इससे पहले बीसीसीआई ने कहा था कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं जाएंगे, हाँ अगर आप मैचेस लाहौर में कराएंगे तो हम शायद खेल सकते हैं। पाकिस्तान ने एज अ रिजल्ट अपनी आइटिनरी के अंदर लाहौर डाला और फिर पूरे का पूरा प्लान जो है बीसीसीआई को दिया। बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला साहब, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान में उसी वक्त ट्रेवल करेंगे जब इंडियन गवर्नमेंट हमको ऑथराइज करेगी, तो अगर उसने ऑथराइज ना किया तो फिर हम पाकिस्तान का टूर नहीं करेंगे। इंडिया हैजंट टूर्ड पाकिस्तान सिंस 2008। चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये फर्स्ट मेजर क्रिकेटिंग इवेंट है जो कि पाकिस्तान में होने वाला है आफ्टर 1996 वर्ल्ड कप जो इन्होंने होस्ट किया था विद इंडिया एंड श्रीलंका। तो मतलब है फड्डा तो पड़ा ही पड़ा ना। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट यूएस बास्केटबॉल, जिन्होंने के पेरिस गेम्स में जाने से पहले हमारे कनेडा मासूम को हराया 86-72 इन लास वेगस, और जो है अब ये सिर्फ 4 मैचेस अवे हैं टू रीच फ्रांस। 7th रैंक कनाडा जो है वो इनसे पहले भी मिला था इन ब्रोंज मेडल गेम एट फीबा FIBA वर्ल्ड कप इन सेप्टेम्बर और जो है कनाडा ने इससे पहले जो था मेडल जीता था इस इवेंट पे। ये जो मैच था, ये जो जिसमें के यूएसए ने कनाडा को हराया, उसमें भी बहुत बड़े बड़े जो है डिग्निटरीज आए हुए थे, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ओबामा। और क्योंकि ये एनबीए का 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी था, तो जनाब साडा कनेडा जड़ा है वह फिर बेचारा मासूम हार गया है, पर कोई गल नहीं, वी डाई टू लिव अनदर डे, है ना जी।
बिल्कुल जी, ऐसा ही
ऐसा ही है,
हमेशा कल तो आएगा ही ना, तो जीत जाएंगे,
इसीलिए तो हम आज मरते हैं। वही तो वी डाई टू लिव अनदर डे,
कोई बात नहीं, आप कर लें।
हाँ जी,
हो गई खबरें,
ये थी पख्तियां खबर,
सारी पका दी,
सारी पका दी,
गल गई, खिला दी, पका दी, सब
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
तो हम निकल लें।
पकाती हुई खबरें नहीं है ये, पख्तियां खबर,
पख्तियां,
हाँ पख्तियां, और जोर लगाओ एक दफा,
ये होता ना यार, अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं यार, क्या पख पख लगा के रखी है?
अच्छा अच्छा, अब ये रेसिज्म नहीं है जो तुम मुझे कह रहे हो,
वो आप नहीं, फिर मैंने इसमें क्या रेसिज्म आया,
आपने मुझे कहा तुम पख पख कर रही हो, यानी कि आप एक लेडी के खिलाफ ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं,
ये एक एक अल्फाज और जिसको कहते हैं लव्स, वो रिकॉर्डेड है। मैंने कहा हम कहते थे यार ये क्या पख पख लगा के रखी है,
हाँ तो तुम डायरेक्टली मुझे सुना रहे हो ना,
कि यार
तुम मुझे सुना रहे हो कि आप क्या पख पख कर रही हैं।
देखिए आपके साथ ना वही हाल करूंगा जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया ब्लूमबर्ग के साथ,
ब्लूमबर्ग नहीं ये इनके साथ जो है यूरोपियन यूनियन,
ब्लूमबर्ग नहीं छापी,
छापी है खबर, छापी है,
सड़क कॉल,
हाँ
भाईजान कलीवली,
हाँ कलीवली,
आप जो खबर छाप रहे हैं
झूठी है,
गलत है,
ठीक नहीं है,
तो जो आप भी कह रही हैं,
हाँ ब्लूमबर्ग कहता है साड़ी ते खबर ठीक है, सानू अंदर की खबर है,
छापो जी अंदर की खबर क्या, हाँ, हम ही खबर दे रहे हैं, वो भी अंदर की, तो अंदर की खबर तुम्हारा खबर देखिए, मेरी खबर छाप रहे हैं, जब तक मैं नहीं दूंगा तो कैसे छापोगे मुझे बताओ,
वहाँ पे जो और एक शैतान बैठा ना नटखट बच्चा, उसने दे दी है ब्लूमबर्ग
को भी लॉलीपॉप, मैंने ही दिया यार, दे दो ब्लूमबर्ग के जाके लॉलीपॉप, जरा देखे माहौल चेक करना पड़ता है ना,
हाँ चेक करना,
माहौल कैसा चल रहा है बाहर का, गर्मी है सर्दी है,
गर्मी है, इतना तो गर्म माहौल चल रहा है यहाँ पे, तो इतनी तो गर्मी है,
चले जनाब गर्म माहौल को जो है वो आगे बढ़ा देते हैं, और आपका बहुत शुक्रिया सर,
थैंक यू,
आज हमारे साथ जुड़ी गर्मा गर्म खबरें दी, और तमाम सामईन का और नाजरीन का शुक्रिया जनाब, हम तो कहीं नहीं जा रहे, मतलब कहने का मतलब है कि ये सेगमेंट अब हम इख्तिताम करते हैं, न्यूज का सेगमेंट टॉप ऑफ द आवर का जो है, इसके बाद ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा कलाम है और टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक है, उसके बाद लियाकत मलिक साहब जो हैं वो सूफी कलाम लेके आपके साथ शामिल होंगे, तकरीबन 9 बजे तक वो आपके साथ रहेंगे, तो शैल साहब आपका बहुत शुक्रिया,
थैंक यू अमर, थैंक यू,
चलें जी, और तमाम सामीन और नाजरीन को जो है वो मेरी तरफ से भी जो है वो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक और शादी मलिक जिंदा रही, तो उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-767-0241-6477-690-241।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਲ ਸਟੇਟ ਐਜੈਕਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ $1,775 ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ 647-290-3773 ਯਾਨੀ 647-290-3773।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care। Truck you!
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ब्रैम्पटन सड़कां, फुटपाथां अते बस स्टॉप दे सर्दियां दे रख रखाव दे कॉन्ट्रैक्ट दा नवीकरण करन जा रहा है अते इह जानना चाहुंदा है कि शहर दे निवासी इन्हां सेवावां दा भुगतान करन लई तैयार हन। परिणाम स्वरूप निवासियां दे लई टैक्स वध सकदे ने, पर सारियां परिवारां नूं इह सेवा दा लाभ नहीं मिल सकदा। सारे फुटपाथां नूं साफ करन लई सालाना $2.6 million दा खर्चा आउंदा है। $12 हर परिवार नूं इन टैक्स कोस्ट एवरेज पवेगा। ड्राइववे तों बर्फ साफ करन लई इस दी कीमत $19.6 million प्रति साल होवेगी। ते अपने सुझाव देण लई अज ही विजिट करो
brampton.ca/engage.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872।